अब होंगी बातें करियर की।
मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। मैं आरजे ज्योति जोशी और आज हमारे बीच मौजूद है मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के फार्मेसी के डीन डॉक्टर विशाल गुप्ता सर। सर आपका स्वागत है हमारे शो बातें करियर की में। सर जैसे फार्मेसी डेली लाइफ में लोग यूज़ करते हैं, मतलब अगर उन्हें हेडेक हो रहा है, उन्हें फीवर आ रहा है, तो सर फार्मेसी का क्या क्या स्कोप है, फार्मेसी में क्या क्या ब्रांचेस है या क्या क्या स्कोप है जो लोग कर सकते हैं?
बी फार्मा करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारी फील्ड्स में जा सकते हैं। अभी तक जैसे लोगों को पता है कि फार्मेसी जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल स्टोर आ सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। ये दो कॉमनली जैसे ही फार्मेसी का ध्यान आता है तो लोगों के दिमाग में दो चीज़ें आती हैं, बट इसके अलावा और फील्ड्स हैं। जैसे सबसे बड़ी फील्ड है इंडस्ट्री, जो भी लड़का जो भी स्टूडेंट्स फार्मेसी करते हैं इसके बाद वो इंडस्ट्री में जो सेक्टर है, एक तो R&D सेक्टर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा है प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं और R&D में भी जा सकते हैं। डिफरेंस ये है कि R&D सेक्शन में जाने के लिए हमें PhD डिग्री तक कंप्लीट करना पड़ेगा। बी फार्मा, एम फार्मा, PhD करने के बाद हम R&D में जाएंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। और प्रोडक्शन में जाने के लिए बी फार्मा करने के बाद भी हम प्रोडक्शन में जा सकते हैं। प्रोडक्शन में अपनी अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे उसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट, तो इन डिपार्टमेंट्स में भी पर्सन जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहे तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर उसको जो गवर्नमेंट लैब्स हैं, जैसे CSIR की लैब्स हैं, उसके अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो NHRC के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर भी फार्मासिस्ट की अपॉइंटमेंट करती है। हॉस्पिटल में भी फार्मासिस्ट का अपॉइंटमेंट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल। तो इस तरह से बहुत सारी फील्ड्स ओपन है फार्मेसी के कैंडिडेट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एकेडमिक्स, यदि कोई पर्सन एकेडमिक्स में जाना चाहेगा तो वो PG और PhD करने के बाद भी एकेडमिक्स में आ सकता है।
ओके सर, सर तो अगर स्टूडेंट अगर वो फार्मेसी करना चाहता है तो ऑफकोर्स वो जानना चाहेगा कि उसको क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि वो फार्मेसी में अप्लाई कर सके। सर क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर होती है फार्मेसी के लिए और क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं फार्मा में?
मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 में बच्चा यदि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यदि सब्जेक्ट है तो उस फार्मेसी में ईजिली उसका एडमिशन हो जाता है। दैट मीन्स मैथ्स और बायोलॉजी के दोनों ही स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जब आप बी फार्मा करने आएंगे, बी फार्मा के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है वो केमिस्ट्री है। तो 8वां सेमेस्टर जो है उसके अंदर लगभग 70% वेटेज केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री के अलावा फार्माकोलॉजी है, देन ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, देन एक फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट स्पेशली जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, जितने भी हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो कैसे बनाई जाती है ये फार्मास्यूटिक्स के अंदर पूरा सिखाया जाता है। तो ये चार बेसिकली ब्रांच, यदि हम बात करें तो चार ब्रांचेस में फार्मेसी है। एक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, दूसरा फार्माकोगनोसी, तीसरा फार्माकोलॉजी और चौथा ब्रांच है फार्मास्यूटिक्स। चार ब्रांचेस जो हैं मेन चलती हैं, कोर ब्रांचेस हैं, इसी में आगे स्पेशलाइजेशन और PhD होते हैं।
ओके सर, सर अगर कोई स्टूडेंट फार्मेसी कर रहा है बट वो MR नहीं करना चाहता फ्यूचर में, उसको अपनी मेडिकल स्टोर्स ऑन करना है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सर एक मेडिकल स्टोर ऑन करने के लिए?
बेसिकली डिप्लोमा फार्मेसी के बच्चे और बी फार्मा के बच्चे दोनों ही मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं। आप एक बार बैचलर डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होने के बाद स्टूडेंट जो जिस भी स्टेट में रह रहा है वहाँ की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पर अप्लाई करता है लाइसेंस के लिए। और लाइसेंस इशू होने के बाद जो पर्सन है वो अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकता है।
ओके सर, सर जैसे कि हमें पता है आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उसके बाद आज आप यहाँ मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में डीन है फार्मेसी के, तो सर अगर कोई स्टूडेंट ऐसे एकेडमिक्स में अगर जाना चाहता है फार्मेसी में से तो उसे कैसे अपने आपको प्रिपेयर करना चाहिए उस चीज़ के लिए?
सबसे बेसिक है एकेडमिक्स में यदि आपको रहना है तो आपका बेसिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे आप बी फार्मा कर रहे हो, बी फार्मा के चारों साल के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी भी ऐसा नहीं कि हमें सुपरफिशियल पढ़ा, उसको हमें डेप्थ नॉलेज लेना चाहिए। और प्रैक्टिकल्स के लिए भी जितना हम मैक्सिमम प्रैक्टिकल कर सकते हैं प्रैक्टिकल करें। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी फार्मा आप अपनी स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं एम फार्मा के लिए। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि चार स्पेशलाइजेशन हैं, वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट। यदि आपका इंटरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ है तो आप फार्मास्यूटिक्स को सिलेक्ट करो। यदि आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, मीन्स आपको है कि किस तरह से ड्रग बॉडी में इफेक्ट करती है, कैसे मैकेनिज्म होगा, तो आप फार्माकोलॉजी ब्रांच चूज कर सकते हो। कुछ पर्सन का इंटरेस्ट होता है नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ कि नेचुरली हमें ड्रग्स कैसे मिलेगी, तो वो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट सिलेक्ट करता है जिसमें पूरा जो है वो ड्रग्स और नेचुरल ड्रग्स के ऊपर है। और एक ब्रांच है दैट इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये उनका इंटरेस्ट मीन दोस पर्सन जिनका इंटरेस्ट है कि ड्रग का एनालिसिस, मतलब जो हम ड्रग ले रहे हैं क्या वो प्योर है, जितना क्लेम कर रहे हैं उतनी ड्रग है कि नहीं है, तो ये उस ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है। तो चारों में से आप कोई सी भी ब्रांच सेलेक्ट करो, एकेडमिक्स में सारे ही ब्रांच इक्विवेलेंट हैं। देन आप जब पीजी डिग्री करते हैं तो पीजी डिग्री के अंदर आपको इसके टोटल डेप्थ नॉलेज दिया जाता है, और फोर्थ जो सेमेस्टर है उसमें आपको एक डेजर्टेशन कंप्लीट करना पड़ता है। वो जो डेजर्टेशन है वो एक प्रैक्टिकल वर्क है, उस प्रैक्टिकल वर्क को पूरा परफॉर्म करने के बाद उसके पब्लिकेशंस होते हैं। देन आप यहाँ तक स्टॉप मीन्स आपका एम फॉर्म कम्प्लीट हो गया, आप टीचिंग लाइन को अडॉप्ट करें एंड साथ साथ टीचिंग आप पीएचडी भी कम्प्लीट करते जाएं अपनी।
ओके सर, सर तो हमारे मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में फार्मा के कौन कौन से कोर्स अभी अवेलेबल है यहाँ पर? स्टूडेंट्स अगर यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो जानना चाहेंगे कि फार्मेसी के कौन कौन से कोर्स हमारे लिए अवेलेबल है यहाँ पर अभी।
एट प्रेजेंट हम लोग डिप्लोमा फार्मेसी चला रहे हैं, बी फार्मा हमारे यहाँ है, एम फार्मा भी हमारे यहाँ चारों ब्रांच में अवेलेबल है, और अभी अभी पीएचडी स्टूडेंट्स भी हमने लेने स्टार्ट कर दिए हैं। दैट मीन्स फार्मेसी में जो कम्प्लीट ब्रांचेस हैं सब हम चला रहे हैं।
ओके सर, सर अगर इंडिया की बात छोड़ के अगर बात एब्रॉड की करते हैं कि एब्रॉड में क्या क्या स्कोप्स है इसके, या फिर एब्रॉड में क्या क्या बेनिफिट्स हैं फार्मा करने के, सो सर क्या?
आउटसाइड इंडिया यदि हम एब्रॉड की बात करें तो वहाँ पर डॉक्टर के इक्विवेलेंट फार्मासिस्ट को माना गया। डॉक्टर तो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स वहाँ पर लिख के देता है, जो भी मेडिकेशन देना है वो फार्मासिस्ट देता है। तो इंडिया से ज़्यादा अच्छा स्कोप इंडिया के बाहर है। कहीं कहीं इंडिया के बाहर ऐसा भी है कि फार्मासिस्ट का जो है वो अपना खुद का क्लिनिक है, डॉक्टर सिम्टम्स लिख के दे देता है, फार्मासिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और वो मेडिसिन डिस्पेंस भी करता है। तो इंडिया के बाहर आप जाएंगे तो स्कोप यहाँ से ज़्यादा मिलेगा आपको, इंडिया से ज़्यादा मिलेगा। अभी इंडिया में भी ट्राई चल रहा है, अभी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, जो जिसकी गवर्निंग बॉडी है, वो ये ट्राई कर रही है कि फार्मासिस्ट को प्रेस्क्रिप्शन लिखने का राइट मिल जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो एक डॉक्टर की इक्विवेलेंट डिग्री हो जाएगी।
ओके सर, सर ऐसा होता है ना जैसे फूड प्रोडक्ट अगर हम चेक करते हैं तो FSSAI का टैग होता है उसमें, जिस वो प्रूव करता है कि हाँ ये क्वालिफाइड क्वालिटी वाला एक फूड है, तो ऐसा सर ड्रग्स के लिए भी होता है ऐसा?
हाँ, ड्रग्स के लिए होता है FDA अप्रूवल, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल। यदि उसमें लिखा रहता है FDA सर्टिफाइड या FDA अप्रूव्ड, दैट मीन्स कि वो ड्रग जो है वो आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल से ही पास होकर बाहर मार्केट में आई है, अप्रूव हो।
ओके सर, सर ऐसा होता है ना लोगों का कि वो लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, मतलब खुद ही अपना ट्रीटमेंट खुद कर लेते हैं, हमें फीवर आ रहा है तो हमने ये दवाई ले ली, हमें हेडेक हो रहे तो ये दवाई ले ली, हम एक बार सोचते भी नहीं कि उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हमें ये दवाई नहीं लेनी चाहिए, तो सर आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में?
मेरे हिसाब से सेल्फ मेडिकेशन जो है वो बहुत डेंजरस चीज़ है, हम लोग सोचते नहीं है। यदि हमें फीवर हुआ सिंपली हमें पैरासिटामोल ले लेते हैं लगता है, और ये बताया भी जाता है पैरासिटामोल बहुत सेफ मेडिसिन है। ऑफ़ कोर्स ये सेफ मेडिसिन है बट एक लिमिटेड अमाउंट में। नॉर्मली ये कहा जाता है 2 मिलीग्राम डोज यदि पैरासिटामोल का पर डे ले रहे हो तो इट इज़ सेफ, बट यदि आपने 2 ग्राम से ज़्यादा ले लिया आपने तो ये आपके लिवर पे इफेक्ट करेगा और ये लिवर पे हेपेटोटॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा। ये एक फार्मासिस्ट को पता होता है, एक डॉक्टर को पता होता है, पर एक कॉमन पीपल को नहीं पता होता। तो इसलिए मैं तो कभी भी ये कहूँगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन जो है वो अवॉइड करें, ना लें। हाँ, बट यदि आपको सपोज एक सिंपली हेडेक हो रहा है और आप कोई पेन बाम लगाना चाहते हैं तो वो इंटरनली बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है, वो आपको हार्म नहीं करेगा। पर यदि कोई भी मेडिसिन है जो बॉडी के अंदर जाके आपको इफेक्ट दे रही है तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप बिल्कुल ना लें।
जी ओके, थैंक यू सो मच सर। सो गाइस आप भी इस बात का ध्यान रखें कि खुद से डॉक्टर ना बने, खुद कोई दवाई ना लें विदाउट डॉक्टर एनी प्रिस्क्रिप्शन। और अगर आप अपने फार्मेसी ब्रांच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारा शो सुन सकते हैं बातें करियर की, जहाँ पे हमारे कॉलेज के डीन हैं डॉक्टर विशाल गुप्ता सर जी, जिन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है फार्मेसी में क्या क्या स्कोप्स होते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो आप हमारा शो सुनते रहिए बातें करियर की। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू।
अब होंगी बातें करियर की।